नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी की। जलती धूप से बचने को क्रूस से छाऊं कहां, क्रूस से छाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। पापों को धो दे, कर दे क्षमा, मुझको कर ले कबूल। पापों को धो दे, कर मुआफी मोहब्बत और अबद जीवन पाऊं तो पाऊं कहां, पाऊं तो पाऊं कहां, कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां, छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां, हाँ मिलता है जीवन जहां।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से एक बार कर सकें। यद्यपि हम आपसे काफी दूर हैं, लेकिन हम धन्यवादी हैं कि आपके जीवित वचन को इस रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं और आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक भाई बहनों की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दे, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। प्रभु जी, मैं नहीं जानता कि कितने श्रोता भाई बहन अपने जीवन में दुखी और निराश हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आपका वचन सामर्थी है। प्रभु जी, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो तनाव में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो बीमारी में हालत में हैं, आप उनसे बातचीत करें, उन्हें शांति दें, ताकि आज के वचन के द्वारा वे आप पर भरोसा रख सकें, ये जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, चाहे उनके माता पिता, भाई बहन, इष्ट कुटुम्ब उन्हें छोड़ दिए हों, उनसे घृणा करते हों, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आज के शाम आप उनसे हरेक से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, हम देख रहे थे कि यीशु ने स्वर्ग में प्रवेश की सच्चाई निकुदिमस के सामने रखी कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और फिर उसने निकोदिमस को कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, ध्यान दीजिए, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अन्यथा सब दंड के भागी हैं, अर्थात वे जो ज्योति मसीह यीशु को अस्वीकार करते हैं उनके लिए है। इसी ज्योति अर्थात मसीह यीशु की गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी कि उसे स्वर्ग से अधिकार प्राप्त है और वह आग से बपतिस्मा देता है, उसी को बढ़ना है, वही सर्वोपरि है, वही जगत के पाप उठा ले जाता है, अतः उस पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त है। मित्रों, आज हम देखेंगे कि यीशु सामरिया से जा रहा था, जबकि यहूदी उस मार्ग से बचकर चलते थे। वहां वह एक स्त्री पर सच्चाई प्रकट करता है कि वह जीवन का जल है जो परमेश्वर की ओर से है कि मनुष्य की आत्मा तृप्त हो जाए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। मित्रों, यह समय लगभग दिसंबर 27 का था। यूहन्ना इस समय बंदीगृह में था और यीशु यहूदिया से निकलकर गलील क्षेत्र में आ गया था। अब प्रश्न यह है कि वह यहूदिया से क्यों चला गया। यीशु नहीं चाहता था कि इस समय यहूदिया में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो। वह स्वर्गीय पिता की दी गई समय सूची के अनुसार वहां से चल रहा था। उसने स्पष्ट कह दिया था कि वह स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने आया था। अपने जीवन के बारे में तो वह कह ही चुका था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि उसकी जान को ले लेना मनुष्य के वश में नहीं था। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 1 में उसका जान देने का समय आ गया था के बारे में चर्चा है। अतः वह यरूशलेम प्रवेश की ओर अग्रसर होगा। यह उसके स्वर्गीय पिता की समय सूची थी। मेरे मित्रों, वह गलील क्षेत्र में अपने मुख्यालय कपरनहूम को चला गया। हम देखते हैं आगे यीशु का सामरी स्त्री से साक्षात्कार। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। मित्रों, वह सामरिया से क्यों गया, जबकि यहूदी उस रास्ते से नहीं जाते थे? क्योंकि वहां एक स्त्री थी जिसे अनंत जीवन की प्यास थी। वह गलील के काना नगर जा रहा था और वहां पहुंचने के 3 मार्ग थे। गलील सागर का तटीय मार्ग, जो आज भी है, दूसरा यर्दन के दूसरी ओर पिरिया से होकर, और तीसरा सामरिया से होकर। इतिहासकार जोसेफुस ने इस प्रकार से कहा कि यहूदियों और सामरियों में सद्भावना नहीं थी, अतः यहूदी सामरियों से दूर रहते थे। मित्रों, यीशु को अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, जैसा कि उसने पद 34 में कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा को पूरी करूं और उसके अनुसार चलूं और उसकी काम को पूरा करूं। अतः यीशु को जो सामरिया के मार्ग से जा रहा था और उसे इस मार्ग को लेना अवश्य ही था। हम आगे पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दे दिया था। वहीं पास में यूसुफ की कब्र है। रोमियों के बनाए मार्ग का यह दो राह है। वहां यीशु एक कुएं पर बैठ गया और यह नगर सुखार नगर कहलाता था। वहीं उत्तर पश्चिम में गिरिजीम पर्वत है और पर्वत के ढलान पर सामरियों का आराधनालय भी है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। मित्रों, ध्यान दीजिए, रोमी समय के अनुसार 6वां घंटा शाम की 6 बजे का था, परंतु यहाँ यहूदी समय लिखा है, अतः यह समय दिन के 12 बजे का है। यीशु थक गया था क्योंकि वह मनुष्य ही था। यूहन्ना उसे देहधारी परमेश्वर का पुत्र कहकर दर्शाता है। हम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना सुसमाचार में हम इस वचन को पाते हैं। मेरे प्रियो, यह भाषा सरल है, परंतु इसकी गहराई पर ध्यान दें। अनंत काल का परमेश्वर पृथ्वी पर आया और हमारे बीच में डेरा किया। सामरी उस युग में संपन्न मनुष्य नहीं थे, अतः यीशु उस स्त्री से भेंट करने के लिए कुएं पर बैठ गया। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मित्रों, ध्यान दीजिए, यह स्त्री अभद्र और अनैतिक थी। वह निकोदिमस की तुलना में प्रत्यक्ष पापी थी। दोनों के साथ यीशु के व्यवहार की तुलना करके देखिए कि निकोदिमुस के साथ यीशु कोमल व्यवहार नहीं करता है, परंतु इस स्त्री के साथ उसका व्यवहार अति कोमल है। वह तो स्वयं जीवन का जल है, परंतु वह उस स्त्री से पानी पीने को मांगता है। तब हम यूहन्ना 4:8 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। यीशु के शिष्य भोजन खरीदने गए थे और सामरिया के हाथ का भोजन खाने का अर्थ है कि यीशु यहूदी ऊंच नीच की प्रवृत्ति का विरोध था। यहूदी सामरियों के भोजन को अशुद्ध मानते थे। हम यूहन्ना 4:9 में आगे पढ़ते हैं, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह कैसे ठट्ठे से यीशु के साथ बात करती है। सामरी अपने आप में यहूदियों को तुच्छ जानते थे। मनुष्य को उबारने के लिए हमारा प्रभु कितना नीचे जा सकता है, यह एक प्रमाण है। यीशु उसे नागरिक अधिकारों का या सद्भावना की चर्चा नहीं करता है। वह सीधी सच्ची बात कहता है और उसमें जिज्ञासा एवं प्यास उत्पन्न करता है। हम यूहन्ना 4:10 में पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वह उसकी जिज्ञासा को जानता है और वह तुरंत रुचि भी दिखाती है। हम यूहन्ना 4:11-12 में आगे पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? अब वह स्त्री उसे प्रभु कहकर संबोधित करती है। उसने पहले यीशु को प्रभु नहीं कहा था। यह स्त्री केवल सांसारिक रूप से ही सोच रही थी। उसकी बुद्धि कुएं और उसके पानी तक ही सीमित थी। वह अपने आप को याकूब का वंशज कहती है और वे थे भी, परंतु अशुरों की बंधुआई, जिसे हम 721 ईस्वी पूर्व बाद में पाते हैं, उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के वासियों से अंतर जातीय विवाह कर लिया था और इसी कारण वे अशुद्ध भी ठहरे गए। हम आगे देखते हैं यूहन्ना 4:13-14 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मित्रों, यीशु ने उसे स्पष्ट समझाया कि वह कुएं के जल की नहीं आत्मिक जल की चर्चा कर रहा है, अर्थात आत्मिक जल की बातें कर रहा है। आज विश्व में, अर्थात विश्व को सांसारिक जल की चिंता है। वे आत्मिक तृप्ति के विषय में निश्चिंत हैं और सोचते भी नहीं हैं। हम यूहन्ना 4:15 में पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। उस स्त्री में आत्मिक प्यास थी, परंतु वह केवल कुएं के जल तक ही सोच पाती थी। हम यूहन्ना 4:16 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। यह कार्यकारी युक्ति थी। मित्रों, पानी तो उपलब्ध है, परंतु प्यास भी तो लगना चाहिए। अतः उसे यह बोध होना आवश्यक था कि वह पापी है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को ले आ। उसकी अंतरात्मा हिल गई, वह बचाव खोजने लगी। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 4:17-18 में, स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। उसका कहना सही था। उसके 5 पति हो चुके थे और जिसके साथ वह थी वह वैदिक रूप से उसका पति नहीं था। हमारे प्रभु की यह शर्त है कि उसके पास आने के लिए पाप का निवारण आवश्यक है। नगर की स्त्रियां उससे दूर रहती थी क्योंकि वह पुरुषगामी स्त्री थी। उसमें श्रद्धा का भय उत्पन्न हुआ, जिसे छिपाने के लिए उसने धर्म का विवाद छेड़ दिया। हम यूहन्ना 4:19-20 में पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। मित्रों, ध्यान दें, उस युग में यह विवाद का विषय था कि सच्ची आराधना वहां पर्वत पर होगी या यरूशलेम के मंदिर में। आज भी अनेक जन धर्म का विवाद करते हैं, परंतु उनका आचरण अनुकूल नहीं है। आज बाहरी दिखावा केवल पापों को ढांपने के लिए होता है। किसी ने अति उत्तम बात कही, मुझे वह प्रचार अच्छा लगता है जिसमें एक प्रचारक हो और एक ही श्रोता हो, कि जब वह कहे तू वह व्यक्ति है तो समझने में चूक ना हो कि वह किससे कह रहा है। आज के अधिकांश प्रचारक मनुष्य के पाप पर उपदेश नहीं देते हैं। मैं एक सभा में प्रचार कर रहा था और आरंभ में तो वहाँ मेरे उपदेश ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं हुए, परंतु सप्ताह के मध्य पवित्र आत्मा ने उनके कठोर मन में काम करना आरंभ किया और वहाँ का एक घमंडी पवित्र जन मेरे पास आया और अपने पापों का अंगीकार करने लगा। मैंने उससे कहा कि वह मेरे पास आने की अपेक्षा अपने महान महायाजक के पास जाए, वही उसकी बात सुनेगा और उसे क्षमा भी करेगा। मित्रों, वह व्यक्ति पूरा बदल गया। उसी सभा में दो पास्टर अर्थात प्रभु के दास मेरे पास आए और कहने लगे, क्या आप अपने कलीसिया में भी ऐसा ही प्रचार करते हैं? मैं ऐसा ही प्रचार करता हूं, और मैंने पाया कि वहां कुछ ढोंगी थे जो अपने आप को ध्यान का केंद्र बनाना चाहते थे। वे कलीसिया का संचालन अपने हाथों में रखना चाहते थे, परंतु अपने पापों से मुक्ति नहीं खोज रहे थे। मित्रों, हमारे प्रभु ने व्यक्तिगत पापों को अनदेखा नहीं किया था। यह मेरा विश्वास है कि यदि आपके प्रश्न और संदेह निष्कपट हैं, तो वह आपको समाधान अर्थात सुझाने का तरकीब भी देगा, और इस कार्य में वह विश्वास योग्य भी है। हमारे प्रभु ने इस स्त्री के प्रश्न का समाधान भी सुझाया अर्थात उसे बताया। वह जब इस स्त्री के पाप का हल ढूंढ सकता है, तो वह आपके पाप के हल को भी ढूंढ सकता है। मेरे मित्र, आप चाहे कैसा भी जीवन क्यों न जी रहे हों, यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप पापी हैं, परमेश्वर यही चाहता है कि आप निष्कपट मन से इस बात को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो वह आपके पापों को क्षमा करने में वह विश्वास योग्य और धर्मी है। वह चाहता है कि आप अपने पापों को मान लें और अपने पापों से अपने मन को फिराएं। यहाँ पर इस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर अपने पति को बुला ला, और यह सच है कि वह बिना पति की थी। वह पाप में जीवन जीती थी और इसलिए उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। यदि आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, तो निश्चय जाने कि प्रभु आपको भी अनंत जीवन देने में सक्षम है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आप उसका अनुसरण भी करेंगे। लेकिन निर्णय आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। पापमय जीवन जीना चाहते हैं या उद्धार प्राप्त नया जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। बच जाएंगे पाप अगर एक नजर करम तूने डाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जीने के ढंग में मेरे मसीहा तेरे हो खूब।